भवानी ने कहा, योगिन आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह बात कह डाली। प्रभु आप ज्ञान विराशत हैं, तो आप अपनी बात का उत्तर मुझे सुनाइए। शंभु आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं, उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है वह उसे प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन है और सूक्ष्म प्रतीक की क्या है इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अचरणीय वंदनीय और चिंतनीय हैं वे प्रकृति के ही कारण हैं। इस बात को हृदय में विचार कर ही आपको जो कहना है वे सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती के इस वचन को सुनकर महती लीला करने पर लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्व और प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या ना कभी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन में मन हंस कर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगिन आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए, क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए क्योंकि कहना चाहिए और न करना चाहिए। सब व्यवहार प्राकृतिक है, आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते खाते देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस सब समय हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों के इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुष बुद्धि से विचार कर प्रकृति के मानना चाहिए। योगेश्वर बहुत कहने से क्या लाभ है, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है। सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में ही स्थित हो उनसे यूं बोले। शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह सेवा शास्त्र निशी नहीं होनी चाहिए। गिरिराज से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज मैं तुम्हारी यही अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिष्कर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचार करूंगा। पर्वतराज आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे, आपकी आज्ञा से बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवती देव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव देवता असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट आए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता था, महेश्वर के आदेश से ऐसा ही होता था। प्रत्येक गण पवित्रतापूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते थे उन्हें शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया है। इंद्रजीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर दिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वह भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पालन करती थी। आग से तपकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी, उन्हें मालती पोछती थी, फिर 16 उपचारों से विविध हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। मुनिशेष इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया। ऐसा विचार करके महालीला करने वाली महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुनि परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुला कर वे अपना तपस्या में लगे रहते। तब सती पार्वती ने भी गर्वपूर्वक और उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पति और पार्वती परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और उन दोनों ने परोपकार में तरत पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया।